ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय शारदा दीदी का हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और वर्तमान में अहमदाबाद, अंबावाड़ी एवं संबंधित सेवा केंद्रों की आप संचालिका हैं और यहाँ मधुबन में भी टीचर्स की भर्ती के कार्यक्रम और भी जोन सब जोन इंचार्जेस की जो मीटिंग होती है उसकी आप संचालिका हैं और भी मधुबन में अन्य अनेक सेवाओं के भी आप जिम्मेवार हैं। महिला विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और 50 से भी अधिक वर्षों से समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जयपुर से आप ज्ञान के संपर्क में आए, आपने एमए बीएड किया, फिर 2 साल जॉब किया, 5 साल विदेश सेवा की, साउथ ईस्ट एशिया, हांगकांग, सिंगापुर, अफ्रीका, केन्या, श्रीलंका, यूरोप में आपने सेवाएं दी और उसके बाद दिल्ली पांडव भवन में लगभग 7 साल सेवाएं दी और उसके पश्चात आप अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुत ही निर्माण, सरल चित और मिलनसार स्वभाव के हैं। हम सभी के लिए जो वर्तमान समय की पुकार है, समय कम है और हमें मंजिल पर पहुंचना है तो उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना होगा, तो वो तीव्र पुरुषार्थ की विधियां क्या हैं वो हम आपसे सुनेंगे। समय की पुकार, तीव्र पुरुषार्थ।
ओम शांति। दो दिन से आप सबको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तपस्या करने की। तपस्या भट्ठी में बैठी है और भट्ठी हमको तपा देती है, रूप को बदल देती है। कोई भी चीज को आग में डालते हैं तो उसका रूप अवश्य बदल जाता है। भट्ठी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर देती है, हमारा वाइट वॉश कर लेती है। और भट्ठी में जब बैठते हैं वो नाम ही, वो शब्द ही स्वतः ही सारी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर के हम स्वयं को देखते हैं। फिर दूसरा कोई नहीं दिखाई देता, ये अंदर का दर्पण इतना शक्तिशाली है। और वर्तमान समय पर हम दृष्टि डालें तो मैं समझती हूं ड्रामा ने पिछले 7 महीने का ये समय हमें एक डायमंड चांस दिया है। जो चाहते ना चाहते हुए भी देह के संबंध और इस देह की 5 तत्वों की दुनिया की निगाहों से हमको 4 दीवार की किले में इतना सेफ करके रखा है जो किसी की नजर ना लगे, ना किसी को देखना है, ना किससे मिलना है, ना किसके पास जाना है और ना ही कोई व्यर्थ और फालतू का चिंतन है। एक मैं और बाबा, ये समय ने जो मुझे गिफ्ट दी है इस गिफ्ट को मैंने कितना यूज किया है वो हर एक के ऊपर व्यक्तिगत निर्भर है। अभी भी समय मेरे हाथ में है, गया नहीं है। तो अभी भी जो समय मेरे हाथ में है, इस समय को मैं साक्षी होकर के देखूं, जो बाबा बार बार हम सभी को कहते, समय को अपना शिक्षक नहीं बनाना। समय मुझको सिखाए नहीं, समय मुझको रियलाइज नहीं कराए, समय मुझको पढ़ने के लिए, योग करने के लिए मजबूर नहीं करे। स्वयं भगवान ने सारे विश्व की आत्माओं में से मुझे चुना है और इतना श्रेष्ठ भाग्य मुझे दिया है। अपने उस भाग्य को मैं देखूं और उस भाग्य को देखते हुए जो समय की रफ्तार जा रही है उसमें और मेरे पुरुषार्थ की स्पीड, क्या दोनों समान है या मैं समय से आगे जा रही हूं। जैसे आज भी बाबा ने कहा, अगर अभी कोई बाबा से पूछे कि बाबा मैं अगर अभी मर जाऊं तो मेरा क्या पद होगा, हम हर एक अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जितना हम खुद खुद को जानते हैं दूसरा मुझे उतना नहीं जानता है। तो उस समय की रफ्तार के अनुसार मेरी सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या में जो बाबा ने मुझे कहा है वो एक्यूरेट है, परफेक्ट है, उस पर मेरा फुल अटेंशन है। कि सबसे पहली बात बाबा ने कही, अमृत वेले, दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेले से। आंख खुलते ही सामने कौन नजर आए, मैं किसकी हूं, मेरे सर्व संबंध किसके साथ हैं, मुझे सर्व प्राप्तियां किससे हैं, सर्व रसों का अनुभव मुझे किससे लेना है। तो क्या आंख खुलते ही ये स्मृति आती है कि मैं उस ब्रह्मलोक से ब्राह्मण आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई हूं। और ये अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय सतगुरु बाबा से सर्व वरदान स्वयं में मुझे धारण करने हैं, क्योंकि वो समय है वरदानी। उस वरदानी समय में जितने वरदान बाबा से लेने हैं वो सारे वरदानों से मैं अपने को भरपूर कर सकती हूं। उस समय बाबा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि ये बाबा ने मुझे अपॉइंटमेंट दी है। आपको कोई बड़ा वीआईपी अपॉइंटमेंट दे तो आप 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, लेट नहीं पहुंचेंगे। तो अमृत वेला मेरी अपॉइंटमेंट सारे विश्व के रचयिता से, जिसको दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, जिससे सुख शांति मांग रही है, वो मेरा पिता उसने मुझे अपॉइंटमेंट दी है, वो मैं कैसे मिस कर सकती हूं। तो दिनचर्या की शुरुआत, वो अमृत वेला मुझ आत्मा का शक्तिशाली है या आलस्य और सुस्ती में समय चला जाता है, क्योंकि वही सारे दिन का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो सारे दिन की दिनचर्या की जो बिल्डिंग है वो कैसी होगी, अनुभव कर सकते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में कभी कभी कहते हैं, आज पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया, मेरा आज सारा दिन बिगड़ गया। हम किसी का मुख देखे ही नहीं, सुबह सुबह बाबा से वरदानी दृष्टि लेकर के वरदानों से खुद को भरपूर कर लिया, मेरा सारा दिन कितना श्रेष्ठ खुशनुमा वाहरे में, मेरे जैसा कोई नहीं होगा। ऐसी महसूसता अमृत वेले का वो शक्तिशाली योग हम सभी को अनुभव कराएगा। फिर भी सुस्ती आती है, आलस्य आता है, अपनी बाबा की अमृत वेले का महत्व की किताब बहुत बहुत सुंदर है, जिसमें बाप दादा ने अमृत वेले का महत्व और उसके साथ साथ उस समय में क्या चिंतन चाहिए, क्या स्वरूप चाहिए, वो सब उसमें सुनाया है। रात को थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ के सोए, सुबह उठ करके फिर से एक पैराग्राफ पढ़ लें और फिर बाबा की याद में बैठे। सुस्ती आती है, आलस्य आता है, बाबा से बात करो। बातों में तो किसी को सुस्ती नहीं आती है, आती है, किससे बातें करने बैठ जाओ घंटा बीत जाएगा। उसको बुलाएंगे, भाई कितनी घंटे से बात कर रही हो, क्या घंटा हो गया क्या, हम तो अभी बैठे थे। बातों में तो समय का ही पता नहीं पड़ता है, तो सीधा चुपचाप बैठ जाऊं योग में तो नींद आएगी। बाबा से बहुत मीठी मीठी दिल की प्यार भरी बातें करो, फिर देखो आपका जो अंदर का आनंद होगा और अंदर जो शक्ति भरेगी, क्योंकि खुशी खुराक है। खुद को महसूस करेंगे कि ये याद कितनी शक्ति भरती है, आत्मा में कितनी ताकत भर देती है और इतना सहज है। उसके बाद तैयार हुए, शरीर को तैयार किया आत्मा ने फिर शरीर को तैयार किया, नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए, फ्रेश किया, अपनी डायरी और पेन ली। दूसरी बात, स्टूडेंट लाइफ, ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, अपने क्लास में पहुंचे, मेरा परम शिक्षक मुझे पढ़ाने के लिए 6 बजे क्लास में आता है, मुझे 5 मिनट पहले पहुंच जाना है। उस पढ़ाई के लिए मैं आत्मा कितनी चातक होनी चाहिए, वो दुनिया का एक चातक पक्षी है। वो चातक पक्षी की विशेषता कहते हैं, कभी नीचे से पानी की बूंद भी नहीं लेता है। शरद पूनम की रात को जो ओस पड़ती है वो चोंच खोल करके यूं बैठ जाता है, और उस समय जो बूंद उसको मिलती है वही पानी वो लेता है, बाकी सारा वर्ष कहीं पानी नहीं लेता है। ये पढ़ाई मेरे लिए उस जातक गॉडली स्टूडेंट के लिए वो शरद पूनम की बूंद है। कितनी ज्ञान की बूंदें, कितना ज्ञान का खुद भंडार बाबा हम बच्चों को समय देते हैं, जो आत्मा के लिए एक संजीवनी बूटी है। समय को देखते हुए एक एक सेकंड पर जो पढ़ाई हमने पढ़ी हुई है वो हमको इस समय यूज आ रही है। याद करते हैं ये 7 महीनों को रिवाइज करें। जैसे ही परिस्थिति शुरू हुई क्या महसूस किया, बाबा ने कहा था अचानक ये परिस्थितियां आएंगी, आप सेंटर नहीं जा सकेंगे। आया था याद, अचानक परिस्थिति आ गई। मुझे याद है बॉम्बे में जब ताज होटल पर टेररिस्ट ने अटैक किया था, उसके बाद रमेश भाई बाबा से बात कर रहे थे और बाबा को बताया था, बाबा कर्फ्यू लग गया है, वहां कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है, ऐसी सिचुएशन है। बाबा ने कहा बच्चे ये तो कुछ भी नहीं है, समय ऐसा आएगा आप अपने घर की खिड़कियां भी नहीं खोल सकेंगे। सोचो वो समय क्या होगा। अभी तो फिर भी ऑनलाइन मुरलियां सुनी सबने, और ही क्लासेस से इतना भरपूर हो गए, इतना खजाना मिला सारा दिन, जो बात नहीं पूछो, जो रेगुलर में नहीं मिलता था वो भी मिला। कितना सुंदर बाबा ने पढ़ाई का हमको चांस दिया, कितना अपने आप को हमने भरपूर किया। अब जब खिड़की नहीं खोल सकेंगे, आज साइंस के साधनों ने काम किया, कल ये साधन भी नहीं होंगे, ये साधन भी नहीं होंगे। उस समय क्या होगा, कहां से पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा, फोन भी नहीं कर सकेंगे, वो भी नहीं चलेंगे। उस समय जो पढ़ा हुआ है उसका प्रैक्टिकल रिवाइज करते स्वरूप होगा, वो भी प्रैक्टिस ये समय हमको करा रहा है कि तुमको जो बाप ने पढ़ाया है उस पढ़ाई को मैंने कितना स्वरूप में लाया। ऐसे तो कह देते सारा दिन कारोबार है, बिजनेस है, ऑफिस है, धंधा है, ये काम है, ये काम है, सोशल काम है, कहीं शादी है, कहीं पार्टी है, टाइम नहीं मिलता है। ये 7 महीने तो पढ़ाई का कितना अच्छा टाइम मिला, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। इस पढ़ाई का पहला लेसन, मैं आत्मा हूं। आत्माभिमानी स्थिति का इस समय में मैंने कितना अभ्यास किया। नष्ट मोहा तो परिस्थितियों ने बना दिया, ना किससे मिलना, ना जाना, ना आना। कोई ने शरीर छोड़ दिया, नहीं जा सकते, दो एक फूल भी नहीं चढ़ा सकते, शक्ल भी नहीं देख सकते। बॉम्बे की एक माता रियल बात सुना रही, थोड़ा घबराहट, उसके युगल को थोड़ी घबराहट हुई, बच्चे हॉस्पिटल ले गए। वैसे तो हॉस्पिटल ले जाना ही मुश्किल, क्योंकि सारे हॉस्पिटल कोरोना, कहां ले जाएं और किधर ले जाएं। फिर भी पहचान से नजदीक के हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने बच्चों को कहा आप नीचे रहिए, ऊपर नहीं आ सकते, रूम तक नहीं जा सकते। आईसीयू में सीधा ले गए, आधे घंटे के बाद आके बोलता है गया। अरे अच्छा भला तो आया, कोई कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक थोड़ा पेन था। बच्चों ने मां को फोन किया, मां घर से शॉल लेके आई, चंदन की माला लाई, डॉक्टर को कहे मुझे एक मिनट शक्ल तो देखने दो, मैं शॉल तो चढ़ाऊं माला तो पहनाऊं, नहीं। ये स्थिति प्रैक्टिकल में हम सबके सामने कैसे नष्ट मोहा बन गए, कैसे डिटैच हो गए। ऐसे नहीं बनेंगे तो परिस्थितियां मुझे बनाएंगी। बहुत कुछ इस वर्तमान समय ने हमको सिखाया, यहां जो बाबा ने पढ़ाई हमको पढ़ाई है, वो पढ़ाई कितनी यूज में आई, कितनी मैंने अपने आप को स्व की स्थिति में श्रेष्ठ बना करके रखा, कितने अपने श्रेष्ठ स्वमान में रही, उस समय वो सारी पॉइंट, सारे वो बिंदु मुझे स्मृति में आते रहे। मुरली सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि एक घंटा सुबह जाके मुरली सुनना है, नहीं तो दीदियां कहेंगी क्यों क्लास में नहीं आए। प्रैक्टिकल जीवन में उसको स्वरूप में मैंने कितना लाया है। तीसरी बात, ईश्वरीय मर्यादाएं। इस समय प्रैक्टिकल में बाबा ने हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, हमको तो बनाया लेकिन अज्ञानियों को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। समय ही ऐसा था, बाहर खाना ही नहीं है, कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। कितनी उनों को तकलीफ हुई जिनको बाहर खाने की आदत, बाहर घूमने की आदत, सारा कारोबार बाहर, और हम अपनी उस मर्यादा की लकीर के अंदर। लेकिन ये बुद्धि मर्यादा की लकीर से कितनी बार बाहर चक्कर लगा के आई, ये कब पूरा होगा, ये कब पूरा होगा लॉकडाउन, कब पूरा होगा लॉकडाउन, ये चलता रहा। या मैंने कहा ये तो कितना अच्छा है, हम आत्मा सहज मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई, ना किसका देखना, ना सुनना, ना बोलना, ना तेरा ना मेरा, कुछ भी नहीं। सीता ने बिचारी ने तो एक बार लक्ष्मण रेखा पार की तो सारी जिंदगी राम के वियोग में रही, आ गई रावण से, फिर धोबी ने कलंक लगाया, फिर बाहर जंगलों में भटकी, रही एक राम की लेकिन वो वियोग की याद में रही, योग वाली याद नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। लक्ष्य मन, इस मन का जो लक्ष्य है उससे पार कितनी बार सारा दिन में हो जाते हैं, सारा दिन कितनी बार लक्ष्मण रेखा से पार होते हैं। आज बाबा ने बार बार स्मृति दिलाई, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, हम कौन सी दुनिया बना रहे हैं जहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा। तो मुझे ये स्मृति सारा दिन रहती है, मैं नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनूंगी, ये लक्ष्य मुझे पक्का है, दृढ़ है, या घड़ी घड़ी लक्ष्य भी खिसक जाता है आत्मा की तरह, ये लक्ष्य मेरा खिसकना नहीं चाहिए। चलो आत्मा को तो एक बार समझा सूक्ष्म में खिसक जाती है, लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण सामने दिखाई देता है ना, मुझे ऐसा बनना है, इनके जैसे नयन है, इनके जैसे बोल है, इनके जैसा चेहरा है, चलन है, मुझे उस मर्यादा की लकीर में रखेगा। हम सुबह से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा, कहीं मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं करते हैं, चाहे संकल्प से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, संबंध से, व्यवहार से, ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम बनी हो। बाबा ने इस समय को देखते हुए हमें खाने पीने की बहुत अच्छी मर्यादा दी है, बाहर खाना ही नहीं है। आज बाहर की दुनिया बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। एक दो के प्रति नफरत, ईर्ष्या, द्वेष वश उनों के ऊपर क्या क्या कर देते हैं। तो पानी तो है, आप पानी ले लीजिए ना, उस पानी में भी कुछ मिला दिया। इतना तो योग पावरफुल नहीं है जो उसको ओवरटेक कर सके, आत्मा पर उसका असर ना हो। बाबा कहते हैं पानी भी बाहर नहीं पीना है, वो भी साथ में लेके जाओ। आने वाला समय कैसा होगा, बाबा ने हमको बहुत अच्छी तरह से ये दर्पण में क्लियर किया है। ज्ञान सागर बाबा ने एक एक बात हमको स्पष्ट की है। मैं उस ही मर्यादा में रहूं, उससे संकल्प का अंगूठा भी बाहर ना निकले। कोई एक काजू का टुकड़ा भी पकड़ा है ना, नहीं लेना। कहीं तो ड्राई फ्रूट है, ले सकते हैं ना, बड़े प्यार से दे रहा है, उसमें हर्जा क्या है। बस वहां प्यार जो है ना, वो पूरा ही प्यार कर लेगा, जो उसके ही दीवाने हो जाएंगे। धन्यवाद, बड़े प्यार से, रेस्पेक्ट से उसको कर ले। चौथी बात, चार्ट। रोज रोज पापा कहते बच्चे चार्ट लिखो, चार्ट लिखो, चार्ट लिखो। हम बच्चे भी चार दिन लिखते हैं, पांचवें दिन फिर वही रफ्तार हो जाती है, फिर बाबा मुरली में कहते हैं फिर शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि चार्ट बहुत अटेंशन खिंचवाता है, बहुत अटेंशन खिंचवाता है। मैं चार्ट शब्द को एक्सप्लेन करती हूं। इंग्लिश शब्द है ना, CHART। पहला शब्द है सी, केयरफुल एंड चीयरफुल। अगर हम चार्ट लिखते हैं तो बहुत बहुत केयरफुल रहते हैं, सावधान रहते हैं, बड़ा खबरदार रहते हैं सारे दिन भर की दिनचर्या पर, और वो खबरदारी हमको बहुत खुशी देती है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी आती है, अटेंशन होता है, अलर्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, और स्थिति अट्रैक्टिव बनती है, तो खुशी होगी ही होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा। दूसरा एच, हार्ड वर्क। चार्ट लिखना बहुत बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि अपनी मनसा पर, वाचा पर, कर्मणा पर, दृष्टि पर, वृत्ति पर, सब पर अटेंशन, और फिर ऑनेस्टी से लिखना है, ईमानदारी से, खुद खुद के साथ ईमानदार, खुद को धोखा नहीं दूं। इतनी ईमानदारी से, मेहनत से, ये नहीं सारा दिन बीत गया और रात को चार्ट लिखना शुरू करूं, नहीं, आधे से ज्यादा तो मुझे याद ही नहीं रहेगा। हर दो घंटे के बाद, एक घंटे के बाद मैं अपने आप को देखूं, नोट कर दूं, हर घंटे के बाद अपने को चेक करूं, नोट करूं। रात को लिखने जाएंगी तो आज तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने किसको कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, मेरा कोई संकल्प नहीं चला, नहीं, अपने को फुल मार्क्स दे दूंगी, लेकिन ये लिखना बहुत सूक्ष्म है, जैसे कहा ना हार्ड वर्क है चार्ट लिखना, तो मुझे अपने साथ हार्ड होना पड़ेगा और ऑनेस्ट ईमानदार होना पड़ेगा, तब मैं लिख सकती हूं। इसलिए बाबा चार्ट पर हमारा रोज अटेंशन खिंचवाते हैं, हमको उड़ना है, फास्ट जाना है, समय से फास्ट मुझे जाना है। तीसरा है ए, अटेंशन प्लीज। आर्मी कैसे अटेंशन प्लीज रहती है? हम रूहानी सेना है, शिव शक्ति पांडव सेना है, हम रूहानी मिलिट्री है, हम सैल्वेज आर्मी है। कितना अटेंशन, एक सेकंड भी अटेंशन इधर से उधर गया, माया चील के माफिक झपट लेती है, किसको चांस ही न मिले। इतना अटेंशन प्लीज की पोजीशन में हम रहे, अटेंशन प्लीज वाला कभी हिल नहीं सकता, उसको यूं खड़ा किया तो खड़ा ही रहेगा। जरा भी हिलेगा नहीं। दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस के बाहर और उस रोड के ऊपर में पुलिस खड़ी रहती है, सिक्योरिटी वाली, वो ऐसे खड़े रहते हैं जैसे स्टैच्यू खड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक हिलेंगे नहीं, दूर से आपको स्टैच्यू ही दिखेंगे। इतना खुद की इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। तो मुझ आत्मा को भी एक्यूरेट चार्ट लिखना है तो ये इंद्रियां सारी मेरी ऑर्डर में हो, इसलिए उनको मुझे अटेंशन प्लीज। कोई कुछ बोलने जा रहा है, किसकी थोड़ा एक्शन ऐसा हुआ, अटेंशन प्लीज। कौन हो? रूहानी सेना हो, मेरा सेनापति ऑलमाइटी है। चौथा शब्द आता है आर, रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा कहते जैसा कर्म आप करेंगे आपको देखकर दूसरे करेंगे, मेरा एक एक एक्शन फॉलो फादर मदर चाहिए। जिम्मेवारी किसकी है? सारे विश्व का कल्याण करना है, और उस कल्याण के लिए आज बाबा ने कहा रहम दिल बनो, खुद को भी याद कराओ औरों को भी याद कराओ। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व को, सारी प्रकृति को मुझे पावन बनाना है। इतना जिम्मेवार होकर के, रेस्पॉन्सिबल होकर के मुझे मेरे चार्ट की चेकिंग करनी है। और लास्ट आता है टी, ट्रस्टी। कितनी ट्रस्टी हो, कितना अपने को ट्रस्टी समझ करके सच्चे बाबा से सच्चे होकर के चल रहे हैं, कितना अपने आप से सच्ची हूं। बाबा से सच्ची हूं, साथियों से सच्ची हूं, क्योंकि सच्चे बाप को सत्यता प्रिय है। जो बाबा कहते सच तो मिथुनच। सहज आत्माभिमानी होंगे, आत्माभिमानी होंगी तो बाबा की याद सहज है, जिसमें बाबा ने चार बातों का हमको त्याग कराया। अगर मुझे उड़ना है, समान बाप बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, तो पहला मैं और मेरा शब्द खत्म, डिक्शनरी में ही नहीं चाहिए। साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, कभी मैं शब्द यूज नहीं किया। बाप कहता है, बाप करता है। जब से बाप का बना, बाप करता है, बाप कहता है। और शिव बाबा ही इसकी कहानी सुनाते हैं, ये ऐसा करता था, ये ऐसा करता था, ये ऐसा करता था। दादी के मुख से कभी हमने मैं शब्द नहीं सुना, मैं करती हूं, मैं ये कहती हूं, नहीं, दादी कहती है, जैसे कोई थर्ड पर्सन है। दादी का ऐसा विचार है, दादी ऐसा समझती है, मेरे में से ये मैं और मेरा निकला है, बहुत सूक्ष्म इसकी मैं चेकिंग करूं। इसलिए बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिलाते, जब मैं शब्द आता है तो आत्मा आए, और मेरा शब्द आता है तो बाबा आए। ये प्रैक्टिस मेरी हो गई है। आज भी बाबा ने कहा, शिव बाबा के तो सब बच्चे हैं और शिव बाबा के बच्चे हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, और ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन, और कुछ नहीं। लेकिन भाई बहन से भी ऊपर चले जाओ, आत्मा आत्मा भाई भाई, सिर्फ यही दृष्टि हो, तो ये मैं और मेरा खत्म चाहिए। दूसरा, आलस्य अलबेलापन हम ब्राह्मणों के महाशत्रु महाशत्रु है। अमृत वेले कौन कौन अलार्म लगाते हैं, कौन कौन लगाते हैं हाथ उठो। ओके, अलार्म बजा, आपने किया बंद, फिर क्या सोचते हैं, दो मिनट में उठते हैं। वो दो मिनट कितना हो जाता है, हाँ, दो मिनट कितना हो जाता है, फिर आंख ऐसी लगी जो घंटा चला गया, पांच बज गया। उठते ही आंख खुलते ही कौन याद आया, लेट, सारा दिन लेट हो गया। अब अलार्म बंद किया कि दो मिनट में उठती हूं, अब वो दो मिनट में कोई और एक्स्ट्रा नींद आ जाएगी क्या, सारी रात पूरी नहीं हुई लेकिन वो दो मिनट की नींद बड़ी मीठी नींद होगी, और ऐसी मीठी नींद माया अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाएगी। क्या किया उसने, क्या किया, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर दो मिनट लेट पहुंचेंगी तो क्या होगा, तो कहीं मेरा भी स्टीमर ऐसे ही यहां से निकल ना जाए और मैं किनारे पर खड़ी रहूं। ये आलस्य अलबेलापन मेरा बहुत नुकसान करता है, और तीव्र पुरुषार्थी कभी इसके वश में नहीं होगा। ऑलवेज अलर्ट, आर्मी की तरह। तीसरी बात, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, पर मत, ये चारों पर नहीं चाहिए। न पर चिंतन चाहिए, न पर मत चाहिए, न पर दर्शन करना है, न पर दोष देखने हैं। मुझे बनना है पर उपकारी। अपने आप को चेक करो इन चारों बातों में। और चौथी बात संग दोष, द्वापर से लेकर के संग दोष में रहे, अपने ही संग दोष में रहे ना, क्योंकि देह अभिमान में रहे तो देह के संग में रहे तो क्या दशा हो गई हमारी। अभी सत्य बाबा का संग मिला है तो सत्य बाबा का ये संग निरंतर चाहिए, ये संग छूटना नहीं चाहिए। जो आज बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द दिया, याद को तोड़ निभाना है, याद तोड़ निभाना, यहां से तोड़ना है, देह से तोड़ना है और बाप से निभाना है तो अंत मते सो गति हो। सिवाय बाप के संग के मुझे किसी के भी संग में आना नहीं है, मुझे किसका भी सुनना नहीं है। इसलिए मेरी मनसा निराकारी चाहिए, मनसा निराकारी चाहिए, वाचा निरंकारी चाहिए, कर्मणा निर्विकारी चाहिए। है कि मनसा में सदा मैं निराकारी आत्मा हूं, वाणी इतनी निरंकारी, नम्रचित, सरल, मधुर बोल, सभ्यता के बोल, सम्मान के बोल हो, और कर्मणा न्यारी और प्यारी। करावनहार बाबा करा रहा है आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर रही है, करावनहार करणहार आत्मा। और स्मृति क्या रहे, एक व्रता, एक बाप दूसरा ना कोई। सीता रोती रही, पार्वती अमर कथा सुनते सुनते सोती रही, और मीरा गाती रही, नाचती रही, एक कृष्ण की लगन में मगन रही। मैं कौन है, सच्ची सच्ची मीरा है, हाँ कहना, पेपर आएगा अभी, है सच्ची मीरा है कि सीता है कि पार्वती है, कौन है, सच्ची मीरा है, पक्का। मीरा ने जहर पिया था ना, हाँ पिया था, उस पर जहर ने असर किया नहीं किया ना, क्यों? ये कहानी है कि रियल है बताओ, कहानी रियल है या झूठी है या कल्पना है, हाँ जी, शब्दों का क्या बोला, जहर कौन सा, उसको तो सच में जहर दिया था, उसको सच में जहर का प्याला दिया था, याद में अमृत हो गया। बहुत अच्छी बात माता जी ने सुनाई, साइंस इसको स्वीकार नहीं करती है कोई जहर पी ले और जिंदा हो, लेकिन ये राजस्थान की राजपूतनी, एक कृष्ण के सिवाय दूसरे कहीं बुद्धि नहीं, चाहे महलों की महारानी थी, बहुत कुछ सहन किया, जो सहन का अति रूप जहर भी पिया, लेकिन वो जहर भी उसका कुछ नहीं कर सका, एक व्रता थी। आज मुझे कोई जहर पिलाए पीऊंगी इतना प्यार से और मेरे लिए वो जहर अमृत बन जाए। पीना तो दूर रहा, कोई दो शब्द आज किसको बोल देता है वो भी वो भी नहीं पी सकते, वो भी सहन नहीं होता है, समा नहीं सकते। अपनी स्थिति को चेक करो। अंत के समय में ये सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये दो शक्तियां मुझे बहुत काम में आएंगी। इसलिए कर्मणा से फॉलो फादर करूं, स्मृति फॉलो फादर वाली रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी सच्ची सच्ची मीरा बन के रहूं। दृष्टि आत्मिक पवित्र भाई भाई की, जितनी ऊंची दृष्टि से बाबा मुझे देखते हैं उतनी ही ऊंची दृष्टि से मैं हर एक को देखूं, उसके अनादि स्वरूप को, उसके आदि स्वरूप को। कोई अवगुण, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई तेरा मेरा कुछ नहीं दिखेगा। अनुभव करके देखिए, वृत्ति कैसी हो, अनासक्त उपराम, बेहद की वैराग्य वृत्ति, तब एक बाप दूसरा ना कोई होगा। अब समय मुझे कहता है हे आत्मा उड़ो, डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ, माइट स्वरूप हो जाओ। तो ये सब बातें मैं स्वयं में देखूं तो डबल लाइट हूं, सहज फरिश्ता हूं। आत्मा से भी फरिश्ता बनना आसान है क्योंकि फरिश्ते को शरीर है, लाइट का शरीर है, आत्मा तो बिंदु हो जाती है। बिंदु समझने में मेहनत लगती है। मैं लाइट के शरीर में फरिश्ता हूं, अपने उस प्रकाशमय स्वरूप को, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को रोज हर घड़ी सामने लाऊं। मैं प्रकाशमय काया वाला फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता हूं। तो डबल लाइट है तो माइट स्वरूप है, उसमें शक्तियां ही है। फरिश्ता नीचे उतरा, अपना कर्म किया, फिर समेट लिया अपने को, फिर नीचे उतरा, दूसरा कार्य किया, फिर अपने को ऊपर ले गया। हर कार्य करने से पहले अपने आप को स्मृति में, वृत्ति में लाऊं, मैं डबल लाइट फरिश्ता, ये खाना बना रही हूं। खाना बना, काम पूरा हुआ, एक सेकंड में अपने को डिटैच करूं, फिर दूसरा काम किया, अभी फरिश्ता फिर नीचे आया, अभी क्लीनिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है, किया, फिर फरिश्ता ऊपर गया। चलो अभी ऑफिस जाना है, ऑफिस गए, सीट पर बैठ गए, अपना कार्य किया, एक कार्य पूरा किया, फरिश्ता ऊपर गया, फिर दूसरे कार्य के लिए फिर नीचे आया। अपने आप को सारा दिन मैं ये ड्रिल कराऊं, नेचुरल नेचर बन जाएगी, फिर मेहनत नहीं होगी। साइंस कहती है कोई भी प्रैक्टिस, आप 78 आवर्स, 78 घंटा एक ही प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो आपका संस्कार बन जाएगा। नहीं, अभी 4-5 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में याद किया था, एक मनुष्य को ये बोल दिया तू भैंस है और उसको बंद कर दिया अंदर, एक महीने बाद खोला, बाहर आओ, मेरे सींग बड़े हैं, दरवाजे से बाहर कैसे निकलूं। तो वो सच में अपने को भैंस समझने लगा। मैं 78 आवर्स ये प्रैक्टिस कांस्टेंट करूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। देखो कैसी स्थिति शक्तिशाली बन जाती है, सहज है, लेकिन हम सोच सोच करके ना उसको मुश्किल कर देते हैं। अब समय कहता है उड़ो पंछी, डबल लाइट फरिश्ते सारे विश्व पर छा जाए तो विश्व जो दुखी, अशांत, रोगी, अनिश्चितता, क्या विचारों की दशा हुई है। रहम दिल बनकर उनको सकाश दे, शांति दे, शक्ति दे। तो जब स्वयं इस स्वरूप में आएंगे तभी उनको दे सकेंगे ना, पर साथ साथ देना है। अभी वो भी समय नहीं है कि पहले मैं अपने को बनाऊं फिर विश्व को दूं, दोनों काम साथ करने हैं। अभी तो देखो कितनी सहज दुआएं जमा होंगी और वो दुआएं ही मुझे उड़ाएंगी। ओम शांति।
जादू नहीं तो ये सब से सुहाना।